ஓ ஆதிகுரு சர்வஜ்ஞ பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் வேதாந்த டிண்டிமா நாமக ஸ்தோத்ர கே ஆதார பர் வேதாந்த விசார் சல் ரஹா ஹை. அபியாஸ் கே லியே பாஞ்ச்வா ஸ்லோக். சுக துக்கே பதார்த்தௌ தௌ விப்ரிய விப்ரிய காரகௌ சுகம் ப்ரஹ்ம ஜகத் துக்கம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூபௌதௌ பதார்த்தௌ சர்வசம்மதௌ சமஷ்டிரீஸ்வரோ வ்யஷ்டிர் ஜீவோ வேதாந்த டிண்டிமஹ. ஞான கர்ம பதார்த்தௌ தௌ வஸ்து கர்த்ராத்ம தந்த்ரகௌ ஞானான் மோக்ஷோ ந கர்மப்யஹ இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. ஸ்ரோத்தவ்யாஸ்ராவ்ய ரூபௌ தௌ பதார்த்தௌ சுக துக்கதௌ ஸ்ரோத்தவ்யம் ப்ரஹ்ம நைவான்யத் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சிந்த்யாசிந்த்ய பதார்த்தௌ தௌ விஸ்ராந்தி ஸ்ராந்திதாயகௌ சிந்த்யம் ப்ரஹ்ம பரம் நான்யத் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. தேயாதேய பதார்த்தௌ தௌ தீசமாத்ய சமாதிதௌ த்யாதவ்யம் ப்ரஹ்ம நைவான்யத் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. पदार्थ का विश्लेषण हो रहा है. इस संसार में केवल दो पदार्थ हैं, सुख और दुख. मनुष्यों के द्वारा, जीवों के द्वारा अनुभव में आने वाले यही दो पदार्थ हैं. मनुष्य ले या तो सुख के रूप में अनुभव करता है पदार्थों को, या दुख के रूप में अनुभव करता है. सुख दुख के पदार्थों दो, ये क्रमशः प्रिय और विप्रिय कारकों. विप्रिय माने विगत, प्रियता विप्रियता, अर्थात जिसमें प्रियता नहीं है. जो हमें पसंद नहीं है, प्रिय माने जो हमें पसंद है, जो हमें पसंद है वह सुख दा सुख देने वाले हो जाते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है वह दुख देने वाले हो जाते हैं। वास्तव में कभी सुख दे नहीं सकते, ऐसा पदार्थ, और कभी दुख दे नहीं सकता, ऐसा पदार्थ, जिसमें अप्रियता है ही नहीं, ऐसा वस्तु, और जिसमें प्रियता स्वरूप से है ही नहीं, ऐसा वस्तु। स्वरूप से प्रियता जिसमें नहीं है वही वस्तु हमको दुख देने का निमित्त बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। और स्वरूप से अप्रियता जिसमें है ही नहीं, ऐसा जो वस्तु है वो हमें सुख देने का कारण बन जाता है। बाकी तो या सुखाभास को लेकर दुख के रूप में उपस्थित होते हैं, स्वरूपतः दुख के रूप में है लेकिन सुख का आभास के रूप में सामने आ जाते हैं। स्वरूपतः सुख रूप है, वह दुख के आभास के रूप में तो आता नहीं है, लेकिन जिसमें सुख है नहीं वह सुख के आभास के रूप में आ जाता है। वेदांत का विचार चल रहा है इसलिए इसका रहस्य बता देना जरूरी है। वास्तव में पदार्थ में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदार्थ में सत्यता नहीं, चेतना नहीं, प्रियता नहीं, अद्वितीयता नहीं, इसलिए स्वरूपतः पदार्थों में प्रियता किंवा सुख रूपता नहीं है। और जिसमें सुख स्वरूपता नहीं है, फिर ऐसे पदार्थों के प्रति जीवों का आकर्षण क्यों बना रहता है? इसीलिए, क्योंकि उसकी जो सत्ता है, पदार्थों की सत्ता है, स्वरूप नहीं है, मैं बता रहा हूं, पदार्थ का स्वरूप अलग चीज है, सत्ता अलग चीज है। तो पदार्थ की जो सत्ता है वह सत्ता सुख रूप है। सत्ता सुख रूप होने के कारण स्वरूपता दुख रूप पदार्थ में हमें सुख बुद्धि होने लग जाता है। यूं कहूं, वस्तु में कलर नहीं है, लाल पीला कलर नहीं है, उस वस्तु को प्रकाश करने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश में रंग है। आप लोगों ने पढ़ाई है ना, तर्क संग्रह पढ़ा है, वेदांत परिभाषा पढ़ी है, वेदांत सार पढ़ा है, रूप अर्थात रंग, ये पार्थिव गुण नहीं है। रूप अर्थात रंग पार्थिव का गुण तो है ही नहीं, पृथ्वी का गुण तो है ही नहीं, पृथ्वी का गुण तो गंदा है, रूप रंग तो है ही नहीं। रूप रंग तो तेज का गुण है, और तेज का जो गुण युक्त तेज है यानी प्रकाश है, वो जब पदार्थ में पड़ता है तो हमें पदार्थ रूप रंग वाला लगता है। पदार्थ में स्वरूपता रूप रंग है ही नहीं। उदाहरण के लिए आपको दिख रहा है कि फूल पीला है, कि पीला रंग जो है वह तेज का है, पृथ्वी का तो है ही नहीं, पृथ्वी का तो गंदा गुण है। पीला रंग पीला गुण ये तो तेज का है। इसी तरह लाल गुण तेज का है, हरा नीला एक गुण तेज का है। तो तेज का यानी प्रकाश का गुण, जो प्रकाश जिस पदार्थ में पड़ता है, प्रकाश का गुण उस पदार्थ में भ्रांति से दिखने लग जाता है, और हम कह देते हैं कि फूल लाल है या पीला है या हरा है या नीला है। अंधकार में आप फूलों को कैसे निश्चय करोगे? रंग का तो निश्चय नहीं कर पाओगे ना। स्पर्श से रंग का निश्चय तो होगा नहीं, रंग का निश्चय करने के लिए आंख की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता। केवल आंख से भी रंग का निश्चय नहीं कर पाओगे, प्रकाश उसमें पड़ना पड़ेगा, और प्रकाश उसमें पड़ते ही प्रकाश का रंग उसमें पदार्थ में आरोपित हो जाते हैं, और इसलिए प्रकाश पदार्थ लाल पीला हरा नीला आदि दिखने लगता है। इसी तरह वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य, जब ये दो चैतन्यों की एकता होती है तब मनुष्य को जीवों को प्रियता की भ्रांति होती है, और जहां प्रियता की भ्रांति पैदा हो गई वास्तव में सुखरूपता की भ्रांति हो गई, और सुखरूपता की जहां भ्रांति हुई उसका मूल कारण तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य की एकता से हुई है। लेकिन व्यक्ति आरोप कर लेता है कि पदार्थ से हुई है, तब वो पदार्थ के प्रति आकर्षित होता है। तो इसको कहते हैं सुखाभास। सुख नहीं सुखाभास, पदार्थ में सुख नहीं सुखाभास। जैसे चित्र जो बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, किसी एक प्लेन कपड़े में चित्रकार चित्र बनाता है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, उस चित्र का आधार तो कपड़ा है, और यदि आधारभूत वस्त्र ही वहां न होता तो चित्रकार चित्र नहीं बनाता, बना ही नहीं सकता, क्योंकि निराधार कोई चित्रकार चित्र नहीं बना सकता। इसलिए उसको अधिष्ठान चाहिए, आधार चाहिए, तो वस्त्र का आधार ले लेता है। और उसमें एक मूर्ति बना लेता है और मूर्ति को बढ़िया वस्त्र पहना देता है। तो आपको ये दिखेगा कि कृष्ण है और कृष्ण ने पीताम्बर पहन रखा है। वो कृष्ण ने जो पीताम्बर वस्त्र पहना है फोटो में, वो वस्त्र नहीं है, वस्त्राभास है। वस्त्राभास कहां दिख रहा है? वस्त्र में। वस्त्र में वस्त्राभास दिख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? स्पष्ट है दृष्टांत। कहां दिख रहा है वस्त्र? आप वस्त्राभास वस्त्र में दिख रहा है, चित्र में नहीं। वस्त्राभास का अधिष्ठान क्या है? वस्त्र है। जैसे अधिष्ठान वस्त्र नहीं दिखता, जिस समय तुम वस्त्राभास देखते होते हो उस समय अधिष्ठान वस्त्र तो दिखता नहीं है, फिर कौन सा वस्त्र दिखता है? आभास वस्त्र दिखता है। आज तुम्हारी और हमारी समस्या यही है। वास्तव में अधिष्ठान कूटस्थ का तो हमें बोध है ही नहीं, दिख नहीं रहा है। और जो असली है, और जो है नहीं, जो आत्मा नहीं है, जो चेतना नहीं है, वो दिख रहा है, आत्माभास दिख रहा है। आत्माभास का मतलब चिदाभास। चित का अनुभव नहीं है हमें, चिदाभास का अनुभव है। और हम चिदाभास को ही मैं हूं कह रहे हैं, चित से तो हम परिचित है ही नहीं, हम चित को तो जानते ही नहीं। जैसे चित्रकार के चित्र के कपड़े देखकर हम ये कह दें कि उस चित्र ने कपड़ा पहन रखी है, क्योंकि मूल जो कपड़ा है उससे तो हम परिचित है ही नहीं, उसको तो हम दिख ही नहीं रहे हैं। तो कृष्ण ने पीले रंग का रंग लेप दिया तो कृष्ण ने पीला पीताम्बर पहन ली है, हरे रंग का रंग लेप दिया तो हरा दुपट्टा पहन ली। इस सब को कहते हैं वस्त्राभास। वस्त्राभास वस्त्र नहीं होता। वस्त्राभास क्या नहीं होता है? वस्त्राभास वस्त्र नहीं होता। इसी प्रकार से आत्माभास आत्मा नहीं होता, और इसी प्रकार से पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुखाभास सुख नहीं होता। इन दृष्टांतों से हमको समझना जरूरी है। फिर महाराज, ये सुख कहां होता है? स्वरूप से सुख कहां है? और स्वरूप से दुख कहां है? तो ये बात आदि गुरु शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। सुख दुखे पदार्थौ दौ प्रिय विप्रतिकारकौ सुखम ब्रह्मा। सुख तो ब्रह्म का स्वरूप है और जो वस्तु जिसका स्वरूप होता है वह उससे भिन्न नहीं होता। सुख ब्रह्म का स्वरूप है तो सुख ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा। अब यदि तुम्हें जगत के पदार्थों से सुख का अनुभव करना है, ध्यान देना है, यदि तुम्हें जागतिक पदार्थों से सुख का अनुभव करना है तब जागतिक पदार्थ को ब्रह्म के रूप में निश्चय करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यदि तुम्हें जागतिक पदार्थ से सुख या आनंद का अनुभव करना है तो जागतिक पदार्थों को ब्रह्म के रूप में अनुभव करना पड़ेगा और जब जागतिक पदार्थ ब्रह्म के रूप में तुम अनुभव करने लग जाओगे फिर देखो हर वस्तु से सुख दुख का तो लेस ही नहीं होगा, है? क्योंकि ब्रह्म सुख ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म से निकलकर या ब्रह्म के अलावा और में वह रंच मात्र भी नहीं रह सकता। यदि रहेगा तो कोई संयोग से रहेगा या तादात्म्य से रहेगा, और जो संयोग से तादात्म्य से रहता है वो उसका स्वरूप तो होगा नहीं। जो वस्तु जिसमें संयोग संबंध से रहता है या किंबा तादात्म्य संबंध से रहता है, जैसे उष्णता लोहे में तादात्म्य संबंध से रहता है, संसर्ग हो गया तो तादात्म्यता हो गई, तो तादात्म्यता से लोहे में उष्णता आ गया और वो तादात्म्य संबंध से उष्णता आ जाने के कारण उष्णता लोहे का स्वरूप तो होगा नहीं। स्वरूप नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो संबंध टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट होगा, संबंध टूट जाएगा, जिस संबंध से उसमें उष्णता आ रहा है वो संबंध छूट जाएगा तो वो उष्णता भी उससे गायब हो जाएगा। होता यही है, पदार्थों में सुख रूपता तो परमात्मा के आभास संबंध से आता है और जहां आभासता खत्म हो गई कि फिर वो सुख रूपता खत्म, तो वही पदार्थ आपको दुख देने लगता है। यही प्रेमपुरी आश्रम में 20-25 साल पहले बड़े आनंद से हापुस आंप खाते रहे, है? बड़े आराम से खाते रहे, एक ही टाइम दो दो तीन तीन खा जाते थे, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, है? कब? यही प्रेमपुरी आश्रम में आज के हैं हम, प्रेमपुरी आश्रम के हैं। और आज वही हापुस आम देखते ही डर लगता है, खिलाने वाला तैयार करके टुकड़ा टुकड़ा बना के क्या सुंदर सजा के लाता है, एक टुकड़ा मुख में डालने में भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो अंदर डाये भाई की बेटी जो आ गई उसके चलते डर लगता है, है? डॉक्टर कहता है, भक्त कहते हैं, ज्यादा नहीं खाना स्वामी जी, और उस समय खाते थे क्या आनंद मस्ती। कहां गया वो सुख था, कहां गया वो आनंद था? आभास था तो हमेशा नहीं रह सकता है, वही वस्तु, उसी में वो आनंदता हमेशा नहीं रह सकता। पदार्थ में आनंदता हमेशा नहीं रह सकता है, सुख रूपता हमेशा नहीं है। इसीलिए यहां प्रिय और अप्रिय, रस तो वो आम में अभी भी है, स्वाद तो उस आम में अभी भी है, फिर वही स्वाद वही रस अब डर का कारण क्यों बन रहा है, अप्रियता बन के कारण बन गया। प्रिय अप्रिय सापेक्ष है। तो हमने कहा इसीलिए संत लोग क्या करते हैं, या तो सारे पदार्थ जगत के पदार्थ हैं वह केवल माया कल्पित है करके अधिष्ठान में से बात करके निकाल देते हैं। क्या करते हैं, अधिष्ठान से ये माया कल्पित है ये पदार्थ, इसीलिए पदार्थ में नित्यता नहीं, सत्यता नहीं, आनंदता नहीं, इसलिए उन तमाम प्रतीयमान पदार्थों का बात कर देते हैं। और क्योंकि वह पदार्थ माया कल्पित है इसीलिए किसी न किसी अधिष्ठान में कल्पित होगा, जिस अधिष्ठान में ये पदार्थ कल्पित हैं उसी अधिष्ठान से संत लोग उन पदार्थों का बात कर देते हैं। तो पदार्थों का बात करते ही अधिष्ठान का बोध होगा, अनुभव होगा। तुम्हें उस चित्र में से मूल कपड़ा तब दिखेगा जब किसी केमिकल से वो सब रंग बगा दोगे, धो डालोगे, जिस केमिकल से वस्त्राभास तैयार किया था वस्त्र में, ध्यान देना, जिस रंग से वस्त्र में वस्त्राभास तैयार किया था किसी केमिकल से, उसके रंग को धो डालो, धो डाला तो फिर वस्त्राभास गया, क्या गया, क्या गया, वस्त्र गया कि वस्त्राभास गया, वस्त्राभास गया। अब वस्त्राभास गया तो जो अधिष्ठान वस्त्र है वो तो प्रत्यक्ष हो गया ना, अब अधिष्ठान प्रत्यक्ष हुआ। इसी प्रकार के संत क्या करते हैं, माया से जो पदार्थ परिकल्पना हुई है जिस अधिष्ठान में, और किस अधिष्ठान में, तो ब्रह्म अधिष्ठान के अलावा दूसरा तो अधिष्ठान हो ही नहीं सकता है, एक बात और तुम्हें बता दो इसी दृष्टांत को लेकर, यदि तुम केमिकल से वस्त्राभास को धोने लग जाओगे और वस्त्राभास को पूरी तरह हटाने लगोगे, तो कृष्ण ने जो पीताम्बर पहनी है, कमर के नीचे पहनी है ना, है? तो क्या उनका पांव और कमर रहे और वस्त्राभास जाए, संभव है, है? और जिस समय तुम वस्त्राभास देख रहे हो उस समय उनके पांव और कमर है कि नहीं है? और क्योंकि उनका जो पांव है, उनका जो कमर है, वह भी तो कमराभास है, पदाभास है, पद भी नहीं है, कमर भी नहीं है। और जब तुम वस्त्राभास को, जैसे अब हम कपड़ा खोल देंगे तो हमारा कमर और हमारा पांव तो रहेगा ना, लेकिन उस चित्र का तुम वस्त्राभास को केमिकल से धोओगे तो वस्त्राभास हट जाए और उनकी टांग दिखाई पड़े, संभव होगा, दो नहीं चले जाएंगे। इसी तरह तुम्हें यदि अधिष्ठान में से माया कल्पित ये देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, उस अधिष्ठान में माया ने ये चित्र चित्रित किया है, पदार्थों का चित्र चित्रित किया है, उन अनेक पदार्थों को चित्रित करने के साथ साथ ही तुम्हें भी यानी चिदाभास को भी चित्रित किया है। किसने? माया ने केवल माला नहीं बनाई है, तुम्हारा गर्दन भी बनाया है, तुम्हारी खोपड़ी सिर भी इसी ने बनाया है। किसने? माया ने। रंग ने केवल वस्त्राभास नहीं बनाया है, कृष्णाभास भी बनाया है। कृष्ण बनाया है माया, कृष्ण बनाएगी हैं? बोलो, क्या रंग कृष्ण बना सकता है? चित्रकार कृष्ण बना सकता है? रंग में वो क्षमता है कृष्ण बनाने की, चित्रकार में क्षमता है कृष्ण बनाने की, और चित्रकार और चित्र के द्वारा बनाया हुआ कृष्ण क्या तुम्हारा असली कृष्ण होगा कि आवास कृष्ण होगा? बोलो, आवास होगा ना, वो कृष्ण तो नहीं होगा, कृष्णाभास होगा। अब कृष्णाभास से तुम आराधना करो, उपासना करो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन कृष्ण तो नहीं होगा। लेकिन जब केमिकल से धोगे तो वस्त्राभास के साथ साथ कृष्णाभास भी धुल जाएगा। धुलेगा कि नहीं? बचा पाओगे कृष्णाभास को? इसी तरह वहां केमिकल से धोना है तो यहां ज्ञान ही केमिकल है। ये जगदाभास, जगत, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, ध्यान देना, दोनों ही तो माया कल्पित है। अधिष्ठान सिर्फ माया कल्पित नहीं है, बाकी दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य माया कल्पित है। जिस माया ने भोग्य पदार्थ बनाया है उसी माया ने उन पदार्थों का भोक्ता भी बनाया है। और यदि अधिष्ठान में से भोग्य पदार्थ का बात करोगे तो भोक्ता अपने को बचा पाओगे तुम? बोलो, भोग्य पदार्थ का अधिष्ठान में से तुम बात करोगे तो भोक्ता अपने को अलग बचा पाओगे? ऐसा नहीं है कि हम अपने गर्दन को बचाए रख के माला को ले जाके फेंक दें, यह तो संभव होगा है? लेकिन केमिकल से जब वस्त्रावास को धोने लग जाएंगे कपड़े में से, तो कृष्णावास भी जाएगा और वस्त्रावास भी जाएगा, बचेगा नहीं। बचेगा क्या? केवल अधिष्ठान वस्त्र बचेगा, वस्त्राभास नहीं। इसी तरह जब महात्मा लोग जगत का बात करते हैं ज्ञान के द्वारा तो सिर्फ अधिष्ठान बचा रहता है और वही अधिष्ठान पूर्ण आनंद रूप है। वो अपने आप चिदाभास के रूप में रहकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता नहीं होते, जैसे कि वैष्णव लोग चाहते हैं। जैसे कि वैष्णव लोग क्या चाहते हैं? अपने आप चिदाभास के रूप में अस्तित्व में रहते हुए परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, और जबकि यह संभव नहीं है, जबकि यह संभव नहीं है। अब प्रश्न रख देते हैं, आक्षेप करते हैं कि ब्रह्म ही हो जाएगा तो ब्रह्मानंद का अनुभव कौन करेगा? तो खाली ब्रह्मानंद के अनुभव करने के लिए तुम जीव बने रहना चाहते हो? उनका तो इतना ही है, वैष्णवों का कहना यही है, परमानंद अनुभव, परमात्मा के आनंद का अनुभव करने के लिए हम जीव बने रहें, जबकि यह संभव नहीं है। फिर कौन आनंद का अनुभव करेगा? तो बोले अरे भाई, मीठे को मीठे का अनुभव करने की क्या जरूरत है? ये अनुभव करने की बात कहां से आ गई? अंतकरण उपाधि के चलते अनुभव होगा, उपाधि का बाद होगा, तो फिर अनुभव का साधन नहीं होगा। तुम तो आनंद रूप हो। बोले फिर तो कोई मजा ही नहीं आएगा। आनंद रूप होने से कोई मजा नहीं आएगा, तो फिर मजा ही लेना है तो ले संसार में। तो इसीलिए वो लोग द्वैतवाद को स्वीकार करते हैं या त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं। परमात्मा भी चाहिए, खुद भी अलग रहें, जगत भी अलग रहे, ये त्रैतवाद। तो सुख दुख, या फिर संत क्या करते हैं, या बाद करके अधिष्ठान मात्र का अवशेष रहता है, बाधा अधिष्ठान, और उस अधिष्ठान से अभिन्न होकर वह आनंद का आनंद रूप होते हैं, आनंद का अनुभव नहीं करते। ये शब्दों में थोड़ा गड़बड़ी नहीं कर लेना, लोग कर ले देते हैं। अब बोलना पड़ता है समझाने के लिए, क्या करोगे? जो वाणी का विषय नहीं है उसको भी वाणी से ही समझाना पड़ता है, समझे कि नहीं? जो वाणी का विषय नहीं है उसको किससे समझाओगे? वाणी से ही समझाना पड़ता है। और जब वाणी से समझाना पड़ता है, समझाने लगते हैं, तो ऐसे ऐसे गलती आ जाती है, गलती हो जाती है। क्या? कि वह सब जगत का अधिष्ठान में बात करते हैं और आप ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद का अनुभव करते हैं, ये कहना पड़ता है। जबकि ये शब्द सर्वथा गलत है। आनंद रूप होते हैं, अनुभव करते हैं, ये कहना गलत है। आनंद रूप होते हैं, बस खत्म हो गई बात। सुख दुख के पदार्थ दौ प्रिय विप्रय कारकौ सुखम ब्रह्माय। सुख तो ब्रह्म का स्वरूप है, सुखम ब्रह्म। और दूसरी बात, जगत, जगत क्या है? दुख है। और तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाह रहे हैं? और यही तो हमारी समस्या, और के कुछ भी नहीं है। हमारी समस्या यह है, दुख रूप जगत इति वेदांत डिंडिमा। तो हमने कल ही कह दिया था भाई, कान होते तो सुनते कान वाले होते तो सुनाई पड़ता वेदांत का ये उद्घोष। अब कान वाले तो है नहीं भाई, हम दुकान वाले हैं, तो इसलिए सुनाई नहीं पड़ता है। इति वेदांत डिंडिमा, ये वेदांत बार बार उद्घोष भी कर रहा है, नगाड़ा पीट पीट कर तुम्हारे को सुना रहा है कि जगत दुखम, जगत दुखम, जगत दुखम। फिर भी विश्वास ही नहीं करता है कि जगत दुख रूप है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सुखाभास दिख रहा है, सुखाभास दिख रहा है। जैसे किसी कृष्ण भक्त को, वैष्णव को या कृष्ण भक्त को चित्र का कृष्णाभास को दिखाकर ये कहा जाए नकली है, तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ये कृष्ण नकली है, और जबकि है नकली, तो कृष्ण के साथ नकलीपना जोड़ना तैयार ही नहीं हो। जबकि नकली भी होता है कृष्ण, ये मानने को तैयार नहीं। समझे नहीं, तो उसके हृदय, उसकी आस्था, उसका विश्वास खंडित हो जाएगा और उसके देखा देखी ही, यही पहले बहुत, आजकल तो वो समस्या नहीं है, पहले बहुत जटिल समस्या थी, दिल्ली हरियाणा पंजाब इधर आर्य समाज का थोड़ा ज्यादा बोलबाला था, दयानंद सरस्वती जी का संप्रदाय आर्य समाज आप लोग जानते हैं बहुत लोग, वेद को प्रमाण तो मानते हैं लेकिन पूर्ण रूप में सभी वेद के पक्ष को प्रमाण नहीं मानते, वेद को प्रमाण मानेंगे लेकिन वेदांत को नहीं मानेंगे, कर्म के भाग को मानेंगे ज्ञान के भाग को नहीं मानेंगे, उपासना के भाग को मानेंगे लेकिन उसी वेद के द्वारा अवधारित कल परिकल्पित विग्रह मूर्ति पूजा आदि को फिर वो मानने को तैयार नहीं। आर्य समाज मूर्ति पूजा मानते नहीं, त्रैतवाद मानते हैं, तीन वस्तु है वो मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा फिर नहीं मानते, कृष्ण की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, राम की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, शिव जी की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, बस अग्नि जलाकर वो भूर्व स्वाहा स्वाहा करेंगे, उनकी सब कुछ आराधना का केंद्र ही हवन है। तो पहले बड़ा शास्त्रार्थ हुआ करता था काशी में, जहां अभी विद्वानों के बीच में खूब शास्त्रार्थ हुआ करता था, तो बोले मूर्ति पूजा नहीं मानते थे वो, खंडन करने लग जाए मूर्ति पूजा का, और सनातनी और सनातनी और आर्य समाज ये भेद है दिल्ली की तरफ है, आर्य मंदिर सनातन मंदिर, सनातनी और आर्य, आर्य समाज। तो सनातनी जो मूर्ति पूजक हैं शास्त्रार्थ में चले गए, कहते हैं दयानंद सरस्वती का एक फोटो जेब में डालकर चला गया सनातनी, और आर्य समाज का जो पंडित था विद्वान था वो मूर्ति पूजा का खंडन करता रहा जोर जोर से, तो उसी समय में जेब में से वो फोटो निकाल लिया उसने सनातनी ने, और कहा कि ये क्या है, क्या देख रहे हो तुम लोग, दिखा दिया आर्य समाज जी को, बोले हमारे आचार्य हमारे गुरु हैं दयानंद सरस्वती जी, कहते उसने वहां चप्पल निकाली और उस फोटो पर चप्पल मारना शुरू कर दिया, तो आर्य समाज जी तो बिगड़ गए भभक गए, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया, हमारे गुरु को चप्पल मारी हमारे आचार्य का अपमान किया, अरे बाबा तुम मूर्ति पूजा जब नहीं मानते हो तो ये तो फोटो है ये तो दयानंद सरस्वती नहीं है, क्या है, आवास है, फोटो है, अब फिर यहां क्यों भड़क रहे हो, एक तरफ मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं और दूसरी तरफ फोटो पर चप्पल मार रहे हैं, वास्तव में विचार कर लिया जाए तो आभास भी नहीं है, कागज के अलावा कुछ नहीं है, हम कागज पर चप्पल मार रहे हैं, और तुम कहते हो कि हमारे गुरु को हमारे आचार्य को चप्पल मारा, और जब तुम इतनी कुछ स्वीकार कर रहे हो तो फिर मूर्ति पूजा स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, इनको माला पहनाते हैं तो तुम प्रसन्न होते हो, इनको चप्पल मारते हैं तो तुम दुखी होते हो, तो ये सनातनी क्या गुनाह कर रहे हैं कि राम की मूर्ति बना रहे हैं, कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं और उनकी पूजा करकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं, क्यों खंडन करने जा रहे हो, तो या तो वो दृष्टि होनी चाहिए, तो संत यही दो काम करते, या विवर्त के आधार पर ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त अन्य पदार्थों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, या सबको बात करके अधिष्ठान का अनुभव करेंगे या अधिष्ठान ही अध्यस्त पदार्थ में ओतप्रोत है यह अनुभव करके उनको ब्रह्मानंद विषय से भी ब्रह्मानंद का अनुभव करेंगे और ब्रह्मानंद से भी ब्रह्मानंद का ही अनुभव करेंगे। ये अनुभव करने के लिए दो दृष्टि बनाना जरूरी है, या तो सर्वम खलविदम ब्रह्म करके, सर्वम खलविदम ब्रह्म अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त अध्यस्त की अपनी कोई सत्ता नहीं, इसीलिए हर पदार्थ में अस्थिभाति प्रियता होने के कारण अस्थिभाति प्रिय आनंदता ये ब्रह्म का ही रूप है, तो हर रूप में आनंद का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव उनको होगा ही नहीं, क्योंकि दुख देने वाले पदार्थ पारमार्थिक सत्य नहीं, दुख देने वाले पदार्थ का जगत में अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि आभास का अपना अस्तित्व नहीं होता, इसलिए दुख कहां से आएगा, किधर से आएगा दुख, दुख का कारण ही नहीं है, इसलिए आनंद का अनुभव करते हैं, या फिर आंख बंद करके आनंद का अनुभव करते हैं, या फिर जब देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। यदि यद चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तद् आत्मेति भावयत, आंख से जो भी दिखाई पड़े वही ब्रह्म है। ये क्या है, अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं है, यही दृष्टि है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। और नेह नानास्ति चिंतन, नाम रूप कल्पना मात्र है, इसलिए अधिष्ठान में नाम रूप नहीं है, तो ये दोनों वाक्य सत्य है, जगत में एक ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं का मतलब हो गया नाम रूप का बात, सब कुछ ब्रह्म है का मतलब हो गया कि अधिष्ठान की सत्ता के अलावा अध्यस्त की कोई सत्ता नहीं है। सुख दुखे पदार्थौ दौ प्रिय विप्रय कारकौ सुखम ब्रह्म, पूर्ण सुख तो अपने ही स्वरूप में अनुभव हो सकता है, अन्यत्र जो सुख का अनुभव होगा वह सुख न होकर आभास होगा, आभास से पूर्णता पूर्ण सुखता किसी को नहीं मिल सकता। जगत दुखम, ये तो पक्की बात वेदांतियों को कर लेनी चाहिए। इति वेदांत दिन्निम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।